नमस्कार भारत, 23 दिसंबर दिन शुक्रवार, मैं हूं संदीप सोनी। सीरिया की सेना ने कहा, अलेप्पो पूरी तरह से सेना के नियंत्रण में। पश्चिम बंगाल में 10 दिन पहले हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद पहली बार बाहर आई पीड़ितों की आवाज।
আমার ছোট বাচ্চাকে মারতে গেছিল, গলা টিপে ধরেছিল, আমার স্বামীকে ছুরি ধরেছে।
এক এক ঘর কা আগ লাগাতা হয় বলতা হয় পাকিস্তান জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলতা হয়।
উত্তর প্রদেশ মে চুনাব সে পহলে আরক্ষণ কে মামলে মে এক বার ফির সিয়াসি কার্ড খেলনে কি কোশিশ।
समाजवादी पार्टी ने पुराना दांव है उसको फिर से चला है, ताकि इन जातियों के लोगों को वो कह सकें कि हम भी आपके हिमायती हैं। वो ये आरोप लगा सकते हैं कि भाई हमने तो कहा था और केंद्र सरकार ने नहीं किया।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। सीरिया में सेना ने ऐलान किया है कि अलेप्पो से विद्रोहियों के आखिरी समूह को बाहर कर देने के बाद तबाह हो चुके शहर को उन्होंने पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है। सरकारी टेलीविजन में प्रसारित वीडियो में भीड़ झंडों को लहरा रही है और राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन में जमकर नारे लगा रही है। अलेप्पो में पिछले 6 सालों से गृहयुद्ध जारी था। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने कहा है कि सीरिया में राजनीतिक समाधान ढूंढने की प्रक्रिया अब फिर से शुरू होनी चाहिए। इस्लामिक स्टेट चरमपंथियों ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि तुर्की के 2 बंदी सैनिकों को सीरिया में जिंदा जला दिया गया है। इस वीडियो फुटेज की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी है और तुर्की ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। उत्तरी सीरिया में स्थित अल बाब शहर के आसपास इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के साथ तुर्की की सेना भीषण लड़ाई लड़ रही है। बुधवार को तुर्की के 16 सैनिक मारे गए थे। सीरियाई कार्यकर्ताओं का कहना है कि अलबाब शहर में तुर्की के हवाई हमलों में करीब 50 नागरिक मारे गए हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को और मजबूत कर उसका विस्तार करना चाहिए। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को ऐसा कदम जरूर उठाना चाहिए जब तक कि दुनिया को परमाणु हथियारों की समझ नहीं आ जाती। उनकी सत्ता हस्तांतरण टीम ने बाद में कहा कि वे चरमपंथी संगठनों और दुष्ट शासन व्यवस्थाओं के बीच परमाणु प्रसार के खतरे का जिक्र कर रहे थे। ट्रंप की ये टिप्पणियां राष्ट्रपति ओबामा की नीतियों के बिल्कुल उलट हैं। गृह विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि बराक ओबामा दुनिया भर से परमाणु हथियारों को कम करने में सफल रहे हैं।
We've achieved progress that we believe on a number of fronts. You know, first reducing our stockpile.
हमने कई मोर्चों पर प्रगति हासिल की है। पहला, नई पहलों के जरिए अपने जखीरों और प्रक्षेपास्त्रों को कम किया। दूसरा, अपनी सुरक्षा नीति में परमाणु हथियारों की भूमिका को लगातार कम किया। और तीसरा, ईरान के साथ परमाणु समझौता किया। जॉन किर्बी के शब्द। ट्रंप के इस बयान से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस को अपनी सैन्य परमाणु क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी में अधिकारियों का कहना है कि सोमवार को बर्लिन में हुए हमले के मुख्य संदिग्ध की शिनाख्त के लिए उनके पास पुख्ता सबूत हैं। अनीस अमरीकी उंगलियों के निशान उस ट्रक में मिले हैं जो क्रिसमस बाजार पर दौड़ाई गई थी। इस घटना में 12 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। अमरीकी खोजबीन जारी है और बेल्जियम और नीदरलैंड की सीमा पर चौकसी सख्त कर दी गई है। चांसलर एंगेला मर्केल ने आशा जताई है कि संदिग्ध जल्द ही पकड़ा जाएगा। वहीं संदिग्ध की माँ नूर एल हाउदा हसनी ने कहा है कि अगर उनके बेटे ने इस हमले को अंजाम दिया है तो उनका उससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। उसे मिलाकर मेरे 4 बेटे हैं और मुझे लगता है कि अब हम उसकी गिनती नहीं करेंगे। ये बहुत बुरी खबर है। हम सच्चाई जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में ये वही था जिसने ये किया है, और इसके बाद हम सब उसे सजा देंगे। मैं कभी नहीं कहूंगी कि वो मेरा बेटा है, क्योंकि वो हमारे लिए और ट्यूनिशिया के लिए एक गद्दार है। वो मेरा बेटा नहीं रहेगा। भगवान हमें सच्चाई से रूबरू कराए। संदिग्ध अनीस अमरीकी माँ एल हाउदा के शब्द। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस का कहना है कि उन्होंने संभवतः क्रिसमस के रोज मेलबर्न को निशाना बनाने की एक चरमपंथी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने शहर में कई जगह छापे मारकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि कई महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाया जा सकता था। इसमें ट्रेन स्टेशन और एक गिरजाघर भी शामिल हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत में सभी श्रोताओं को, संदीप सोनी का नमस्कार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं। नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण। कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। सीरिया का एलेप्पो शहर, जैसा कि आप जानते हैं, बीते कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। ताज़ा खबर ये आ रही है कि सीरिया की सेना ने एलेप्पो को पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया है। लगभग छह साल से विद्रोहियों से लड़ रहे राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए इसे अब तक की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए अमर शर्मा से।
सीरियाई शहर एलेपो में सेना की जीत की खुशी मनाते लोगों ने राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन में जमकर नारे लगाए। सरकारी टेलीविजन में प्रसारित वीडियो में भीड़ झंडों को लहरा रही है और जीत का जश्न मना रही है। सीरिया में सेना ने ऐलान किया है कि उसने एलेपो से विद्रोहियों के आखिरी समूह को बाहर कर देने के बाद उसने फिर से इसे नियंत्रण में ले लिया। सेना के मुताबिक इन तथाकथित चरमपंथियों को वहां से खदेड़कर एलेपो को आजाद करा लिया गया है। एलेपो को विद्रोहियों के कब्जे से आजाद कराने के लिए पिछले छह सालों से जंग जारी थी और इसलिए इस जीत को असद की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है। एलेपो में एक सैनिक ने कहा कि उनकी जंग तब तक जारी रहेगी जब तक वे पूरे सीरिया को विद्रोहियों से हासिल नहीं कर लेते। उन्होंने कहा, एलेपो की जीत पूरे सीरिया की जीत है। हम इसे अपने राष्ट्रपति बशर अल असद को समर्पित करते हैं। ये अभी खत्म नहीं हुई है। जिस तरह से हमने उन्हें एलेपो से खदेड़ा है, उनसे हर जगह जंग लड़ी जाएगी जब तक कि कोई आखिरी बचा हो। एक सीरियाई सैनिक के शब्द। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक एलेपो में करीब 50,000 लोग विस्थापित हो गए हैं। पूर्वी एलेपो के एक बाशिंदे ने कहा कि ये एक यादगार मौका था। उन्होंने कहा, हम इस दिन को कभी नहीं भुला सकते। जब हम उन बसों को देख रहे हैं जिसमें विद्रोही सवार हैं, तो हमें चैन मिल रहा है क्योंकि ये बसें हमारी तकलीफों और हमारे दुख के कारणों को हमसे दूर ले जा रही है। पूर्वी एलेपो में रहने वाले एक शख्स के शब्द। राष्ट्रपति असद ने कहा कि एलेपो पर नियंत्रण स्थापित करना सिर्फ सीरिया के लिए नहीं बल्कि ईरान और रूस की भी जीत है। सीरिया में छह साल से जारी जंग में अमरीका और पश्चिमी देश सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के सत्ता से हटने की मांग करते रहे हैं और विद्रोहियों के साथ खड़े नजर आए हैं। उधर रूस पूरी तरह से सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन करता आया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रॉस का कहना है कि एलेपो से बाहर जाने वाले सभी लोग जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने कहा है कि सीरिया में राजनीतिक समाधान ढूंढने की प्रक्रिया की अब फिर से शुरुआत होनी चाहिए।
सीरिया की सेना ने एलेपो पर पूरी तरह से नियंत्रण करने का दावा किया। रिपोर्ट सुना रहे थे अमर शर्मा।
साल 2016 खत्म होने को है और अब नए साल का इंतजार है। साल के आखिर में बीबीसी आपके लिए लेकर आई है कुछ ऐसी शख्सियतों से मुलाकात जिन्होंने गुजरे जमाने में एक अलग मुकाम हासिल किया था।
सवाल एक है कि इतने अवार्ड मिलने से क्या मैं कोई बेटर म्यूजिशियन हो गया?
खानदान हम लोग का रोहिला, वो जो है ना, वो रोहिला किस कदर जालिम जफाजी उकीना परवर था, यानी वो लोग हैं हम।
हमारा इतिहास राजा महाराजाओं का इतिहास रहा है, उसमें जो 80% छूट गया है जो हाशिए के लोग हैं, अगर मैं उनकी बात कहता हूँ तो उसको लेकर विवाद होता है।
मेरे ख्याल से 2 साल की उम्र होगी, तो वालदेन ने हमारे वो सहारा देने के लिए बल्ला ही दिया होगा, कोई और चीज नहीं दी होगी।
हमारी वर्षांत पेशकश में आपसे रूबरू होंगे पंडित रविशंकर, जोहरा सहगल, राजेंद्र यादव और नवाब पटौदी जैसी कुछ और शख्सियतें 25 दिसंबर से दिन भर और नमस्कार भारत में।
नमस्कार भारत में रुख कर रहे हैं भारत का, पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में एक जिला है हावड़ा, वही हावड़ा जहां हुगली नदी पर मशहूर हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। उसी हावड़ा जिले के धौलागढ़ इलाके में हम बात कर रहे हैं जहां इस महीने की 13 तारीख को सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। हिंसा के दौरान कई घरों में लूटपाट की गई, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर प्रशासन ने वहां मीडिया को जाने की अनुमति नहीं दी थी। कल जब प्रशासन ने इसकी अनुमति दी तो हमारी सहयोगी कल्पना प्रधान वहां पहुंची और उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की।
আমার ছোট বাচ্চাকে মারতে গেছিল, গলা টিপে ধরেছিল, আমার স্বামীকে ছুরি ধরেছে।
একে ঘর কে আগ লাগাতা হয় বলতা হয় পাকিস্তান জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলতা হয়। আর মুসলিম ভাই এক হও পাকিস্তান জিন্দাবাদ।
এই কিতনে লোক থে?
সয়ে সয়ে লোক তে হয়, সয়ে সয়ে মুসলিম ভাই হয়।
তো আপকো আপ লোগো কো পাতা নহি চলা বাহার সে ইতনে লোক আপকা গাঁও মে?
বাহার সে লোক হয় আর গাঁও সে আমার পড়সি লোক হয়, পড়সি মুসলিম লোক হয়, বাজু সে মুসলিম লোক হয়, মুসলিম ভাই হয়। হ্যাঁ, লেকিন ও সব কি হয় উদ্দাম মূর্তি, আমলোক তো মালুম নেই যে এসাই মূর্তি করতা হয়। সব আগ জ্বালা লাগ জ্বালাতে হয়।
ঘর মে কিতনে লোক থে? আপ
মা বহন কাকা জটা হয়, লড়কি লোক কো সব, ও সব বিবি জান আর লড়কি হয়, মানে মেরা ভাইজি হয়, ও সব লড়কি লোক কো টানা হাইরা করতা হয়, টানা হাইরা করকে লে লেকে জাতা।
ই ঠুনেছে বোম মেরেছে, ভয়তে পেছন দিক দিয়ে চলে গেছে, আমরা বাগান পার হয়ে খাল পার হয়ে গেছি।
ये आवाज़ें आप सुन रहे थे पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िले में धूलागढ़ से, जहां ठीक 10 दिन पहले सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। अब बात उत्तर प्रदेश की। आज है 23 दिसंबर, 7-8 दिन बाद नया साल शुरू होने वाला है और इस नए साल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। कब होंगे इसकी तारीख अभी नहीं आई है। बहरहाल चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने राज्य की 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। सुनिए लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी सरकार ने आरक्षण का एक ऐसा शिगुफा छोड़ा है जिससे बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को परेशानी हो सकती है। हालांकि दोनों ही पार्टियां फिलहाल इसे बहुत गंभीरता से नहीं ले रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने तो सीधे तौर पर कहा है कि इस फैसले का न तो कोई मतलब है और न ही राज्य सरकार को ऐसा करने का अधिकार है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गयाचरण दिनकर इस मामले में समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी को भी घेरते हैं।
बैकवर्ड से शेड्यूल कास्ट में 17 जातियों को लाने से संबंधित मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। ये स्वाभाविक है कि अगर कोई पिछड़ी जाति की जातियां शेड्यूल कास्ट में शामिल की जाएंगी या शेड्यूल ट्राइब्स में लाई जाएंगी तो उधर जनसंख्या कम होगी और इधर जनसंख्या बढ़ेगी, तो जनसंख्या अनुपात के आधार पर आरक्षण शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स का बढ़ाना पड़ेगा और वो बगैर संविधान संशोधन के कुछ होने वाला नहीं।
राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 17 अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार के पास भेजा है। हालांकि ऐसा ही प्रस्ताव समाजवादी पार्टी ने अपनी पिछली सरकार में भी भेजा था। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि दोबारा सत्ता में आने के बाद उसने इस काम में करीब 5 साल क्यों लगा दिए। पार्टी नेता विजय बहादुर पाठक कहते हैं,
जनता भी समझ रही है कि पिछले 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश की जो भी सरकार दे रही वो केंद्र की सरकार को समर्थन दे रही थी। अगर सरकार की नीयत ठीक थी ये सारे प्रस्ताव तब पारित करके तब क्यों नहीं पास कराएंगे? यानी नीयत नहीं है, केवल एक पॉलिटिकल वेंडेटा खड़ा करने की कोशिश।
वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद शाहिद पाठक के सवालों का उत्तर कुछ इस तरह देते हैं।
2005 में जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तब भी सरकार ने केंद्र सरकार के पास 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा था जो केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि केंद्र सरकार मनुवादी सोच की सरकार थी। और अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रस्ताव को मना करती है तो इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की सोच उत्तर प्रदेश के इस तरह के लोगों के खिलाफ।
निषाद, मल्लाह, केवट, कहार, कश्यप जैसी जिन जातियों को इसमें शामिल किया गया है उनमें से ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके की हैं। समाजवादी पार्टी इन जातियों के जरिए पूर्वांचल में अपनी पैठ और मजबूत करना चाहती है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने भी इनमें से तमाम जातियों को अपने पक्ष में करने के लिए अलग अलग सम्मेलन आयोजित किए थे, लेकिन जानकारों का कहना है कि ऐसा करके समाजवादी पार्टी ने बीएसपी का नुकसान करने की कोशिश की है। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र कहते हैं,
समाज पार्टी का करने की कोशिश है क्योंकि उनके पास मान लीजिए जो भी लिमिटेड जितनी भी शेड्यूल कास्ट हैं उनके अंदर जो एक रिजर्वेशन है 1% का, उसमें अगर आप 17 और जातियां मान लीजिए डाल देंगे तो अभी तक जो उनको छूट्स मिल रहे हैं आरक्षण के उसमें और कॉम्पिटिशन पहुंच जाएगा। मतलब एक तरह से अपने पाले से वो शेड्यूल कास्ट के पाले में या बहुजन समाज पार्टी के पाले में उन जातियों को ढकेल रहे हैं और जो बैकवर्ड आधारित समाजवादी पार्टी है उसको शायद फायदा दिलाने की कोशिश।
बहरहाल राजनीतिक रूप से किसका फायदा होगा किसका नुकसान ये सब तो चुनाव बाद ही पता चलेगा, लेकिन आरक्षण को एक बार फिर चुनावी मुद्दों के केंद्र में लाने की कोशिश तो हो ही गई है। समीरात्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
वैसे भारत में चुनाव से पहले होने वाली इस तरह की हर घोषणा का संबंध आमतौर पर चुनाव से ही होता है, लेकिन फिर भी इस घोषणा के कुछ और पहलू भी हो सकते हैं। उन्हीं तमाम पहलुओं को समझने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल राय ने लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी से बात की।
एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर केंद्र सरकार चाहे भी तो भी इतनी जल्दी नहीं संभव है, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 341 में कहा गया है कि जो 1950 में सूची जो बन गई है अनुसूचित जातियों के हर राज्यों की, उसमें कोई भी संशोधन केवल संसद कर सकती है। तो अब संसद सत्र तो होने वाला नहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पहले। मकसद इसका यह है कि इन जातियों को ये कहना कि हम आपको फायदा देना चाहते हैं।
मायावती इस फैसले का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने भी इस तरह की कोशिश की थी। बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि इसका फायदा इन जातियों को नहीं मिलेगा।
मुलायम सिंह यादव की जो पिछली सरकार थी उन्होंने खुद से ही एक इस तरह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ही, बजाय इसके कि केंद्र करती। तो उसका नुकसान ये हुआ कि दुविधा होगी कि वो पिछड़ी जातियों में है या अनुसूचित जातियों में, फिर उस पर आपत्ति हुई, हाईकोर्ट ने उनके आदेश को रद्द कर दिया और ये माना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी भी उसको रद्द कराने में शामिल थी, वो नहीं चाहती थी। और बाद में फिर मायावती जब सरकार में आई तो उन्होंने केंद्र सरकार को ये भेजा, इस शर्त के साथ भेजा कि तब इनको शामिल कर दिया जाए जबकि जो अनुसूचित जातियों का कोटा बढ़ा दिया जाए 21% से ज्यादा। तो उसकी वजह यही है कि अनुसूचित जातियों को ये डर है कि अगर ये 17 जातियां और आ जाती हैं तो उससे उनके यहाँ आबादी बढ़ जाएगी और उससे लाभ जो है वो कम हो जाएगा। हुआ क्या है कि पिछड़ी जातियों में भी और दलित में भी दोनों में कुछ डोमिनेंट जातियां आ गई हैं जो ज्यादा आगे बढ़ रही हैं और वो नहीं चाहती कि किसी का फायदा और मिले। तो इस डर से मायावती विरोध कर रही हैं कि इससे दलितों का नुकसान होगा, भीड़ बढ़ जाएगी। उधर मुलायम सिंह यादव और ओबीसी के नेताओं को लगता है कि भाई जो ओबीसी का कोटा है 27%, उसमें उनकी जो आबादी है वो करीब 52% या उससे ज्यादा है, 55%। तो उनको लगता है कि यहाँ भीड़ ज्यादा है तो इसमें से अगर कुछ चले जाते हैं अनुसूचित जाति में तो अच्छा है। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो जातियां हैं ये स्वतंत्रता के बाद से ही संघर्ष कर रही थी कि हमको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, क्योंकि तब तो ओबीसी का रिजर्वेशन का कोई कानून भी नहीं था।
चुनाव में क्या इस मुद्दे का कोई फायदा किसी पार्टी को मिल सकता है?
जो भारतीय जनता पार्टी है वो ओबीसी की जो लोअर जातियां हैं जैसे प्रजापति, राजभर और निषाद वगैरह, उनको लुभाने में लगी हुई है और उन्होंने अच्छी खासी सेंध भी बना ली है। तो मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी ने इसलिए भी इस कदम को दोबारा चला है, ये पुराना दांव है उसको फिर से चला है ताकि इन जातियों के लोगों को वो कह सकें कि हम भी आपके हिमायती हैं, हम भी आपका भला चाहते हैं और इसलिए हमने केंद्र सरकार को भेज दिया है। और चूंकि संसद का सत्र इस समय होना नहीं है, चुनाव से पहले ये हो नहीं पाएगा, तो इसलिए वो ये आरोप लगा सकते हैं कि भाई हमने तो कहा था और केंद्र सरकार ने नहीं किया।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी और चित भी मेरी पट भी मेरी। कुछ इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले लगता है कि बिछ गई है राजनीतिक बिसात। और अब आइए देखते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कह रहे हैं। अमर शर्मा स्टूडियो में आ चुके हैं और कई अखबार उनके हाथ में हैं।
जी संदीप, आज तमाम अखबारों ने अंग्रेजी के नजीब जंग की दिल्ली के उपराज्यपाल उनके इस्तीफे को अपनी पहली खबर बनाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की भी ये पहली खबर है और उन्होंने हेडलाइन दी है कि एलजी जंग ने अचानक ही प्रस्थान किया। उपराज्यपाल के पद से नजीब जंग के इस्तीफे देने की वजह पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। अखबार लिखता है कि राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा यह भी है कि जंग ने ऐसा अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया है बल्कि केंद्र सरकार के उच्च स्तर के अधिकारियों के इशारे पर ऐसा किया गया है। हालांकि जंग की ओर से बयान में कहा गया है कि वे अपने फिर से अपने शिक्षा के क्षेत्र में वापसी करना चाहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की एक दूसरी खबर है कि अगर आपके पास गाड़ी की पार्किंग के लिए जगह नहीं है तो आप अपनी नई कार का पंजीकरण नहीं करा सकेंगे। आपको इसका प्रमाण देना होगा कि आपके पास गाड़ी पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कल कहा है कि केंद्र सरकार भविष्य में ऐसी योजना लाने की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि अगर ऐसी कोई प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय भेजेगा तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की पहली खबर है कि चुनाव आयोग ने देश भर में करीब 255 राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है जिन्होंने 2005 से 2015 के बीच कभी भी चुनाव नहीं लड़ा।
चुनाव आयोग और चुनाव राजनीतिक दल होने के नाते वो चंदा भी ले रहे थे।
जी बस चुनाव आयोग ने यही कहा है कि अगले कुछ दिन में सूची से हटाए जाएंगे और इन दलों की फेहरिस्त आयकर अधिकारियों को भेजेगा आयोग और धन शोधन में संलिप्त पाए जाने पर उनके खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई करने की मांग करेगा।
तब पता चलेगा कितना काला धन सफेद किया है।
जी चुनाव आयोग का मानना है कि इसमें से अधिकतर राजनीतिक दल केवल कागजों पर हैं जो चंदा लेकर उसे सिर्फ काले धन को सफेद बनाने की क्रिया में लिप्त है। वहीं आप दैनिक भास्कर अखबार में देख सकते हैं कि 12 साल बाद द्रविड़ के अलावा 2 ICC अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं अश्विन। ये इन्होंने अपनी पहली खबर बनाया है तस्वीर के साथ। वहीं हिंदुस्तान अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की दोनों तस्वीरों के साथ उनके दोनों को बयानों को अगल बगल देते हुए से अपनी पहली खबर बनाया है।
कई दिन हो गए हैं दोनों के बीच जबानी जंग चल रही है।
जी लेकिन कल जब प्रधानमंत्री जब गए हैं नोटबंदी के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, वहां उन्होंने कहा, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि एक युवा नेता बोलने लगे हैं और 2009 में पता नहीं था कि इस पैकेट में क्या है और उन्होंने जब बोलना शुरू किया है तो पता चला कि भूकंप की संभावना खत्म हो गई है। लेकिन ठीक कल यूपी में ही अपने एक रैली को कर रहे राहुल गांधी ने भी कहा है कि मोदी मेरे ऊपर जितना चाहे मेरा मजाक उड़ा ले लेकिन मैंने भ्रष्टाचार के बारे में उनसे जो सवाल पूछे थे उनका जवाब वे दें। उन्होंने राहुल गांधी ने कहा है कि गालिब के शब्दों में मैं कहता हूँ कि हर एक बात पर कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो राहुल गांधी ने भी बहुत एक करारा जवाब देने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो खुद ही बहुत वाकपटु है।
गालिब का बर्थडे भी आ रहा है कुछ ही दिनों के बाद। और एक खबर bbchindi.com का जिक्र हम करते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र हो रहा था, उन्होंने उनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां पर उन्होंने जिस गांव को गोद लिया था उस गांव का हाल नोटबंदी के बाद क्या है, ये खबर आप bbchindi.com पर पढ़ सकते हैं। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां पाकिस्तान से वर्षों पहले आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का मुद्दा सियासी गलियारों में एक बार फिर गूंजने लगा है। इस खबर पर और जानकारी के साथ श्रीनगर से माजिद जहांगीर।
बीते 2-3 दिनों से जो खबरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक राज्य की बीजेपी और PDP की गठबंधन सरकार ने इन शरणार्थियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट या मूल निवास का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है। पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी एक्शन कमेटी के मुखिया लोपा राम गांधी का कहना है कि जो सर्टिफिकेट देने की बातें हो रही हैं वो डोमिसाइल नहीं है बल्कि आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट है। उनका यह भी कहना था कि उन्होंने भारत की केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर की नागरिकता मांगी है जो उन्हें अभी तक नहीं मिली।
डोमिसाइल का जो है जो श्रीनगर में एक गलत र्यूमर है, जम्मू में ऐसा कुछ नहीं है, डोमिसाइल कोई नहीं दे रहा हमें। हमारी जो लड़ाई है वो है स्टेट सब्जेक्ट की, हमने डोमिसाइल को क्या करना है। केंद्र सरकार की तरफ से हमें हमारे बच्चों को पैरामिलिट्री फोर्सेज और डिफेंस के लिए एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मिल रहा है, लेकिन मैं भी अखबारों में ये पढ़ रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही एक गलत मैसेज है जो कश्मीर में चला गया कि इनको डोमिसाइल मिला, डोमिसाइल किसी ने नहीं दिया हमें।
दूसरी जानिब हुकुमा जमात बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इन शरणार्थियों को नागरिकता देने के हित में तो वो हैं ही, लेकिन जो सर्टिफिकेट उन्हें दिए जा रहे हैं वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है बल्कि वो तो महज उनकी आइडेंटिफिकेशन के कागजात हैं जिन पर बेमाने तौर पर हंगामा खड़ा किया जा रहा है। कश्मीर के अलगावादियों ने इन शरणार्थियों को नागरिकता देने की कोशिश पर सख्त विरोध जताया है और चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की कोशिश को वापस नहीं लिया गया तो कश्मीर में इस फैसले के खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने BBC को बताया,
बीजेपी और RSS इस मसले पे एक सियासत कर रहे हैं। RSS का तो बहुत पुराना ही एजेंडा रहा है बीजेपी का कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम अक्सरियत किरदार है चेंज किया जाए, यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस लाए जाए, तो उस हवाले से ये इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो हम महसूस करते हैं कि ये बिल्कुल पॉलिटिक्स की जा रही है, इस पे हमें कोई एतराज नहीं है कि अगर इनको कोई इकोनॉमिक पैकेज वगैरह दिया जाए, लेकिन सिटीजनशिप की तरफ या परमानेंट स्टेटस की तरफ कोई कदम अगर उठेगा तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस उसकी पुरजोर मुखालफत भी करेगी और उसको उसके खिलाफ हम एक एजिटेशन भी चलाएंगे।
उधर विपक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पश्चिमी पाकिस्तान के इन शरणार्थियों के मुद्दे को انسانی بنیادوں پر حل ہوتا ہوا تو دیکھنا چاہتی ہے، تاہم انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ان شرناتریوں کو ناگرکتا دینے کے نام پر سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جس کا وہ ویروھ کریں گے۔ تاہم راجنیتک وشلیشک کہتے ہیں کہ اس سارے مدے کو جان بوجھ کر سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان وشلیشکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بی جے پی جہاں اس مدے پر کھل کر بات کر رہی ہے، وہیں ان کی سہیوگی جماعت پی ڈی پی اس مدے پر ابھی تک خاموش ہے اور آنے والے دنوں میں پی ڈی پی اس مدے کو لے کر تنہا رہ جائے گی۔ ماجد جہانگیر، بی بی سی ہندی، سری نگر۔
جہاں جوش ہو، جنون ہو اور شہرت ہو تو سمجھ جائیے کہ بات ہو رہی ہے کرکٹ کی۔ اور جب یہ کھیلیں گے تو بات ہوگی کچھ اور ہی۔
ایک لڑکا جو کرکٹ کھیل رہا ہے وہ کیسا پرفارم کر رہا ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ میں انڈیا کے خلاف کھیلوں گا پاکستان کی خیر سے۔
یہ ہے پاکستان کے کرکٹ اتہاس میں پہلے سکھ کرکٹر مہندر پال سنگھ۔ تو اس بار بی بی سی نیوز میکرز میں ہے یہی کھلاڑی، تو سننا نہ بھولیے گا بی بی سی نیوز میکرز۔ بی بی سی۔
اب جبکہ سردی کا موسم ہے تو تھوڑے ہاتھ پیر چلائے جائیں، نہیں نکل پا رہے باہر تو چلیے ہمارے ساتھ کھیل کے میدان میں۔ مت کھیلیے لیکن کھیلوں کی دھڑکن محسوس تو کر ہی سکتے ہیں آپ۔
نمسکار، کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں راکھی شرما۔ بھارتی اسپنر آر اشون کو آئی سی سی ورش 2016 میں کرکٹر آف دا ایئر کے لیے بنی سر گیری سوبرز ٹرافی کے لیے چنا گیا، ساتھ ہی انہیں آئی سی سی کا اس ورش کا ٹیسٹ کرکٹر بھی گھوشت کیا گیا۔ اشون گارفیلڈ سوبرز ٹرافی حاصل کرنے والے تیسرے بھارتی کھلاڑی اور کل 12ویں کھلاڑی بنے ہیں۔ اشون سے پہلے بھارتی کھلاڑیوں میں 2004 میں راہل دروڈ اور 2010 میں سچن تندولکر یہ سمان حاصل کر چکے ہیں۔ دروڈ کے بعد وہ دوسرے ایسے بھارتی کھلاڑی ہیں جنہیں ایک ہی سال میں یہ دونوں پرتشٹھت پرسکار حاصل ہوئے۔ ان سے پہلے صرف جاک کیلس، رکی پونٹنگ، کمار سنگکارا، مائیکل کلارک، مچل جانسن اور اسٹیون اسمتھ ہی ایک سال میں یہ دونوں پرسکار حاصل کر پائے ہیں۔ اشون نے 14 ستمبر 2015 سے 20 ستمبر 2016 کے ووٹنگ پیریڈ کے دوران 8 ٹیسٹ میچوں میں 48 وکٹ جھٹکے اور 336 رن بنائے۔ اشون نے اس بیچ 19 ٹی ٹوئنٹی میچوں میں بھی 27 وکٹ حاصل کیے۔ اس سال ان کے پردرشن پر بات کر رہے ہیں کرکٹ وشیشجیہ ایاز میمن۔
بہت ہی بہترین سال ہے، میں تو مانتا ہوں کہ اگر آپ ایم وی پی اگر چننا ہو، موسٹ ویلیوبل پلیئر، تو شاید وہی ایک کھلاڑی ہے جو وراٹ کوہلی کو ٹکر دے سکتے ہیں۔ بلکہ میں کہوں گا کہ ان کا آل راؤنڈ پرفارمنس اتنا بہترین رہا ہے، رنز بھی بنائے ہیں، وکٹس بھی لیے ہیں اور میچز جتائے ہیں، تو شاید میں یہ مانتا ہوں کہ موسٹ امپورٹنٹ پلیئر وراٹ کوہلی اور موسٹ ویلیوبل پلیئر جو ہے وہ ہے روی چندرن اشون۔
2015 کے آخر میں اشون دنیا کے نمبر ایک ٹیسٹ گیند باز رہے تھے اور موجودہ سمے میں بھی وہ اس پائیدان پر قابض ہیں۔ اور وہیں اکھل بھارتیہ ٹینس مہا سنگ یعنی آئٹا نے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے ٹینس سٹار مہیش بھوپتی کو بھارتیہ ڈیوس کپ ٹیم کا کپتان گھوشت کر دیا۔ وہ آنند امرت راج کی جگہ لیں گے۔ امرت راج اگلے سال کی شروعات میں پونے میں نیوزی لینڈ کے خلاف ہونے والے ڈیوس کپ میچ تک ہی کپتان رہیں گے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف فروری میں ہونے والے ڈیوس کپ میچ کے لیے کوچ ذیشان علی اور کپتان امرت راج کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اس میچ کے بعد ذیشان اپنے پد پر بنے رہیں گے جبکہ امرت راج کا پد بھوپتی سنبھالیں گے۔ اس کے علاوہ یو ایس اوپن کے پورو اپ وجیتا اور دو بار کے اولمپئن روہن بوپنا کو نیوزی لینڈ کے خلاف مقابلے کے لیے بھارتی ڈیوس کپ ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے۔ آئی ٹی اے کی چین سمیتی نے فیصلہ کیا ہے کہ لینڈر پیس اور ساکیت مینی نے اسپین کے خلاف پچھلے ڈیوس کپ مقابلے میں رافائل نڈال اور مارک لوپیز کے خلاف اچھا پردرشن کیا تھا، اس لیے وہ ان کی پہلی پسند ہیں۔ کھیل سماچاروں میں فی الحال اتنا ہی۔
بھارت میں بجنے والے ہیں صبح کے 7، وقت ہو چلا ہے کارکرم کے سماپن کا، لیکن پہلے وشو سماچار ایک بار پھر امر شرما سے۔
بی بی سی سماچار۔ سیریا میں سینا نے اعلان کیا ہے کہ الیپو سے ودروہیوں کے آخری سموہ کو باہر کر دینے کے بعد تباہ ہو چکے اس شہر کو انہوں نے پوری طرح سے اپنے نینترن میں لے لیا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ چرم پنتھیوں نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ترکی کے دو بندی سینکوں کو سیریا میں زندہ جلا دیا گیا۔ اس ویڈیو فوٹیج کی پرمانکتا کی پشٹی نہیں کی جا سکی ہے۔ امریکہ کے نونرواچت راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کو اپنے پرمانو ہتھیاروں کے ذخیرے کو اور مضبوط کر اس کا وستار کرنا چاہیے۔ جرمنی میں ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ سوموار کو برلن میں ہوئے حملے کے مکھیہ سندگدھ کی شناخت کے لیے ان کے پاس پختہ ثبوت ہیں۔ آسٹریلیا میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے سمبھوتہ کرسمس کے روز मेलबर्न को निशाना बनाने के एक चरमपंथी साजिश को नाकाम कर दिया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com आपके साथ है। समस्त सहयोगियों के साथ संदीप सोनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।